जो विलिंगी आ गए और पहले आ गए उनको अल्लाह ने रसूल और इमाम वगैरह इमाम बनाया, और जो अनविलिंगली मतलब आए तो वो हो गए मुनाफिक वगैरह। यानी तमाम मखलूक के ऊपर ये फिट करता है। तो यहाँ मैंने जब कुछ उलमा से बात हुई तो एक बताते हैं नहीं ये सही है, ये जो है शियों का मानना, कि कुछ शिया उलमा इस तरह से बताते हैं कुरान की जो आयत है कि इधर कम विलिंगली और अनविलिंगली, ये सही है। तो यहाँ मुझे लगा कि दो स्ट्रीम ऑफ थॉट तो चल रही है।
नहीं वो तो है, देखें वो तो जब आप उस पे जाते हैं ना अकायद और कलामी मबाहिस में, तो वहाँ तो बहुत सारी बातें आती हैं डेफिनेटली। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जितनी भी हकीकतें हैं वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, यानी क्योंकि वो मुशाहदे में नहीं आती, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रही होती वो चीज़ें। तो ज़ाहिर है कि एक अपना पूरा एक वो बनाता है, बेस बनाता है रीजनिंग की, एक किस्म की चीज़ों को लेकर दूसरा एक बेस बना रहा होता है, तो उसमें तो इख्तलाफ हो जाएंगे और यकीनन ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है।
और तीसरा स्ट्रीम ऑफ थॉट है कि अल्लाह ने इमाम को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा दी और वो रिटायर होके बैठ
ये
गया।
तो खैर बिल्कुल बेकार बात है,
ये शियों में है ये
कहते होंगे
आपकी।
कुछ लोग जी, इसे कहते हैं तफवीज,
अच्छा तफवीज।
तफवीज अकीदा, तफवीज के ना खुदा ने सुपुर्द कर दिया। ये तो खैर बिल्कुल ही फजूल बात है, और मतलब अभी जो एक आला मेयार के उलमा है वो तो कोई भी ऐसी बात नहीं कहता,
लेकिन
बल्कि वो ये
एक
कहते हैं कि तफवीज जो है वो जबर से ज्यादा खतरनाक है।
तो अगर सूरज निकलता है तो भाई इमाम के हुक्म से, और डूबता है तो इमाम के हुक्म से, और जो रास्ता अपना तय करता है तो इमाम बताते हैं। ये मतलब इस तरह से ये बहसें भी होती हैं।
देखिए इससे एक तो पहली बात यह है कि इससे हमें क्या करना, पहला मसला तो ये कि भाई इमाम का काम है, इमाम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। पहली बात तो यह है कि इमाम के कामों में हम क्यों दखल अंदाजी करें जाके। और दूसरा ये कि इन सब की दलील क्या है, क्योंकि खुद आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को बार बार किया है, जोर दिया है, वो इस बात पे जोर दिया है कि जो भी हमारी हदीस सुनो उसको कुरान पे लाके इर्ज़ा करो, यानी कुरान से पहचान पहचानने की कोशिश करो कि वहाँ से कन्फर्मेशन हो रही है नहीं हो रही। अब कुरान करीम में तो जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ तो सिवाय खुदा के और तौहीद के कोई दूसरी चीज़ नहीं है, और बाकी जितना भी नबियों के हवाले से बात की गई है या बुजुर्गान के हवाले से बात की गई है, तो उनकी जो सिफत है सबसे पहली सिफत वो बंदगी को करार दिया गया है, और ये बताया गया है कि बंदगी की वजह से ये बढ़े, ना कि ये खुदा के मुकाबले में या खुदा के पैरेलल में कुछ और बड़े भी मौजूद एग्जिस्ट करते हैं। यानी आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो आपको इस तरफ ले जाती है कि अल्लाह तो बड़ा है लेकिन अल्लाह के बराबर या उसके साथ साथ जो हैं और भी बड़े मौजूद हैं।
वही तो तसव्वुर पैदा
जी
होगा ना,
जी
फिर आपके
जी
जहन में ये भी
यही
होगा
बात आएगी,
कि
जबकि
इमाम
इस
का स्टेटस वो है, इमाम का
जबकि
नहीं, इमाम हो नहीं सकता
इस
क्योंकि
चीज़ की तरफ जो है ना, मतलब कुरान करीम की आयतें बिल्कुल नफ़ी करती हैं। कुरान करीम की आयतें से जो बात समझ में आती है वो ये कि असल इंसान का कमाल खुदाई इंसान बनना है, खुदाई सिफात को हासिल करना है, ये रास्ता तमाम इंसानों के लिए खुला हुआ है। इस रास्ते में कमाल वो हासिल करते हैं जो अल्लाह की बंदगी में सबसे बुलंद मेयार पे फायज होते हैं। क्लियर क्राइटेरिया ये, ठीक है, यानी कि और इसी वजह से कि बाकी जितनी विलायतें हैं, चाहे वो रसूल की विलायत हो या चाहे इमाम की विलायत हो, वो सारी की सारी विलायतें विलायत खुदा की लाइन में हैं, यानी विलायत खुदा की सीरीज़ में, और विलायत खुदा की वजह से हैं और विलायत खुदा तक पहुंचाने के लिए हैं। कोई भी विलायत इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती, यानी ये वो सब चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल वाज़ हैं। अगर आप कुरान से वो लें ना, कंसेप्ट लें, तो ये सब कुछ बिल्कुल वाज़ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, अच्छा हम बात शुरू करते हैं, हम नमाज के ये सलात के आदाब सलात के हवाले से बात कर रहे थे। तो पहला चैप्टर जो इसमें है आदाब सलात में, वो ये है कि वो कौन कौन से आदाब हैं, जो वो कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं कि जिनकी वजह से या जिनके ज़रिए से इंसान सही नमाज़ पढ़ने के काबिल हो सकता है या नमाज़ के असरार और फ़वाद को हासिल कर सकता है। इसमें सबसे पहले जो बात बयान करते हैं वो ये कि सबसे क्रूशल जो डिसिप्लिन है बंदगी के लिए और जो इस राह पर आगे चलना चाहता है आखिरत की बुलंदी की, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि खुदा की अजमत और खुदा के मुकाबले में अपनी हकारत को पहचाने और जाने। अगर आप इमाम अली अलैहिस्सलाम की वसीयत पर गौर करें कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को है नहजुल बलागा में, वहाँ भी आपके इब्तदाई जुमलों में ये लफ्ज़ आता है कि ए फर्जन, इस बात को पहचानने की कोशिश करो कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुदा के कितने मोहताज हो। यानी ज़िंदगी की एक अहम तरीन जो मारिफत है, उस मारिफत में का जो अहम तरीन पहलू है वो क्या है कि इंसान इस बात को दर्क करे कि हम अपनी ज़िंदगी में और हर काम में, यानी ऐसा नहीं कि फ़क़त हम कहें कि हाँ इबादात में या कोई रूहानी मामलात में, हर किस्म के मामलात कि तुम अल्लाह के कितने ज़्यादा मोहताज हो। तो यहाँ भी वो ये जुमला कहते हैं कि इस राह पर चलने वाले, और देखें फिर एक बड़ी अहम बात कि जैसे कि बयान कर रहे हैं कि नमाज यानी एक रास्ता, ये एक बड़ा अहम पहलू है कि इबादात एक रास्ता है इंसान की तरक्की के लिए, न कि इबादत कोई एक अमल है कि जैसे हम फ़कत उसूल सवाब के लिए अंजाम देते हैं। ठीक है, और यही वो कंसेप्ट है कि जो बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे होते हैं कि जब सवाब और अजाब की बात की जाती है तो सवाब और अजाब की बात हकीकतन नाबालिग जहनों के लिए की जाती है। जिस तरीके से कि आप बच्चे को कभी टॉफ़ी या मिठाई से लालच देते हैं और कभी स्टिक से उसको डराते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सवाब और अजाब की बात की गई है दीन में। लेकिन जो मैच्योर माइंड्स हैं, जो हकीकत को समझते हैं, उनके साथ खुदा ने इस तरीके से गुफ्तगू नहीं की है। और कुरान करीम की बाज़ आयतें जो हैं वो हैरानी में डालने वाली हैं, जहाँ पर इस किस्म का खिताब है उतुल इल्म व उलुल अलबाब। आप कुरान में सर्च कीजिएगा उतुल इल्म यानी जिन्हें इल्म दिया गया, व उलुल अलबाब के जो साहिबान लुब हैं यानी जो ह्यूमैनिटी की क्रीम हैं या जो साहिबान मग़ज़ हैं, अक्ल व खिरद रखने वाले अफराद हैं, उनके बारे में कुरान करीम की आयतें ये कहती हैं कि ये जो बातें हम लोगों को बता रहे हैं ये इनके सीनों में मौजूद हैं, कि उसको जानते हैं पहले से कि यह हक़ है। यानी कि जो कुछ हम कुरान करीम के ज़रिए से नाजिल कर रहे हैं ये साहिबान इल्म हकीकी और उलुल अलबाब के लिए कोई अजनबी चीज़ नहीं है, बल्कि जैसे ही हमारी आयतें नाजिल होती हैं तो ये उसकी तस्दीक कर रहे होते हैं कि हाँ ये सच है, हाँ ये हक। ठीक है, तो इबादत का जो हकीकी मतलब है वो क्या है? इबादत यानी राह सुलूक, सैर इलल्लाह। सुलूक का मतलब आप समझते हैं? सुलूक का मतलब इन जैसे हम सैर व सुलूक का लफ्ज़ जो आजकल बहुत एक बज़ वर्ड भी है, तो सुलूक का मतलब ये होता है कि जैसे एक चीज़ आहिस्ता 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 अपना रास्ता बनाती हुई अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यानी सुलूक का मतलब एक बिल्कुल चश्मे ज़दन में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना नहीं है कि आपने सफ़र किया और 2 मिनट में एंड पे, नहीं, बल्कि दिक्कत के साथ। जिस तरीके से कहा जाता है पानी अपना रास्ता बनाता है पहाड़ों में से या ज़मीन के अंदर से और फिर फव्वारा बन के और चश्मा बन के उबलता है, तो वो जो पानी पूरा अपना रास्ता जो टॉर्चुअस उसका पाथ है बनाते 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 फिर चश्मे की शक्ल में बाहर निकलता है, या पहाड़ों से गुजरते 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 फिर आबशार बनता है, इस रास्ते को समझ लीजिए कि ये राह सुलूक है। तो इसी तरीके से इंसान का की भी जो मूवमेंट टू द अपवर्ड डेस्टिनेशन है वो भी राह सुलूक है। यानी ऐसे ही हमें कि जैसे पानी निकलता है तो उसे ज़मीन को काटना पड़ता है, पहाड़ को काटना पड़ता है, इस तरीके से, तो इसी तरीके से हमें भी डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, डिस्ट्रक्शंस, डेविएशन सब को टैकल करते हुए आहिस्ता 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 हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी मंजिल से करीब होते हैं या पहुँच जाते हैं। तो ये कहा जाता है ये राह सलूक है। तो इबादत जो दीन ने हमें और आपको पकड़ाई हैं, हमारे हाथ में दी हैं, ये राह सलूक है। यानी मिसाल के तौर पर देखें, ये सब चीज़ें हमको बयान कर दी गई हैं लेकिन हम तवज्जो नहीं करते। वो जो हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है, बचपन से हम सुनते हुए आते हैं कि नमाज की मिसाल क्या है, कि एक नदी की सी है, एक चश्मे की सी है कि जो तुम्हारे घर के सामने हो, और कोई उसमें 5 मरतबा गुसल करे तो उसके जिस्म पर मैल बाकी रहेगी। मैंने पैगंबर अकरम ने अपने असाब को समझाया इस तरीके। तो इसका मतलब क्या है इस रिवायत का, इस कौल पैगंबर का? यानी दिन भर में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं तुम्हारे नफ्स पर, उन तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने का ज़रिया तुम्हारे पास नमाज है। कि जितने मसाइल दिन भर में तुम्हारे ऊपर आते हैं और एक गर्द और गुबार और मैल कुचैल के तरीके से तुम्हारे नफ्स पे जम रहे होते हैं, अगर उनसे अपने आप को क्लीन करना चाहते हो, उनसे अपने आप को पाक करना चाहते हो, तो तुम्हें क्या चीज़ दी गई है? नमाज। तो इसी तरीके से जो आगा फरमा रहे हैं कि ट्रैवलर अलॉन्ग द पाथ ऑफ हियर आफ्टर, यानी वो मुसाफिर जो आखिरत की राह पर चल रहा है, सही है कि एक मुसाफिर, अभी मैं वहाँ बात कर रहा था हॉपर्स के, उसमें तो आप लोग भी सुन लें अगर आपने अब तक ना सुना हो, तो वो एक अच्छा उनवान है। वो ये है कि मैंने ये तो मैंने आप लोगों के साथ तफसील से बात की थी कि जैसे कि ये दुनिया लाइब लहब वाली है जहन्नम है, लेकिन जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं लाइब लहब से हट कर, जो हमारी मटीरियलिस्टिक लाइफ है, बेसिकली इंसान को इस मटीरियलिस्टिक डोमेन से बाहर निकलना है। यानी हम लाइब और लहव से तो जान छुड़ा ली हमने, यानी जहन्नम से बाहर आ गए, लेकिन कैदखाने से बाहर नहीं निकले अभी, प्रिजन से बाहर नहीं आए, डार्कनेस के डोमेन से बाहर नहीं आए। तो इस कैदखाने से और तारीकी और जुल्मत से जान छुड़ाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान मादियत के कैदखाने से अपने को आज़ाद करे, यानी दूसरे अल्फाज में या दुनिया से आखिरत में जाए या मुल्क से मलकूत में जाए, तब वो इस तारीकी से आज़ाद हो जाएगा, तब जुल्मात उसके पास नहीं होंगी, तब कोई चीज़ उसको कैद करने और पकड़ने के लिए नहीं होगी, जंजीरों से आज़ाद हो जाएगा। बात वाज हो रही? तो ये इबादत, और इबादत में भी सबसे बेहतर नमाज, सबसे अफजल नमाज, ये क्या है? ये राह सलूक है दुनिया से आखरत के तक। और राह सलूक का मतलब भी समझ लीजिए, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि सलूक इज नॉट द ईजी वे। सलूक वो रास्ता है कि जो तमाम रुकावटों से लड़ भिड़ कर बनाना पड़ता है, और जिस पर इंसान आहिस्ता 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 होता हुआ अपनी मंजिल तक जाता है, ये राह सलूक है। और एक और चीज़ भी उन्होंने आगा जवादी आमली के एक दर्स में बहुत अच्छी मुझे लगी थी, बहुत ही अच्छी लगी थी, वो भी आप लोगों से शेयर करूँ, ये सलूक के ही हवाले से, कि इस चीज़ पर कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इस आयत का ये मतलब भी निकल सकता है, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए तो खुदा ने उनको 2 मोजज़ात दिए थे, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा गए थे तो तौरात मिली थी, पहली दफ़ा जब गए थे तो 2 मोजज़ात मिले थे, एक तो हाथ में जो डंडा था, असा था, उस असा को खुदा ने ज़िंदा कर दिया था, सही है, और ज़िंदा करने का जो कंट्रोल है वो हज़रत मूसा के हाथ में दे दिया था, कि उसके ज़रिए से उन्होंने दरिया के 12 हिस्से भी बनाए, उसके ज़रिए से वो अजदा भी बना, एंड सो ऑन। यानी कि वो फिर एक लकड़ी नहीं रही थी बल्कि वो एक ज़िंदा, एक हकीकत बन चुकी थी वो चीज़। ये एक मोजज़ा दिया था, और दूसरा मोजज़ा उनको दिया था यद बैज़ा वाला, कि उनके हाथ में चमकता हुआ एक निशान था अंडे की शक्ल का। तो लेकिन उसमें जब आयत के जो अल्फाज हैं, वो बहुत अजीब है कि खुदा हजरत मूसा से कह रहा है उस लुक यदा का फी जईबे का, उस लुक यानी राह सुलूक से गुजारो, शायद तर्जुमा यही हो सके जो बेस्ट पॉसिबल है, उस लुक यदा का अपना हाथ कहाँ उसको गुजारो राह सुलूक से अपने हाथ को, फी जईबे का, जैब क्या है, ये गरेबान है, यानी ये जो हमारे गरेबान की जो ओपनिंग है ये जैब है, और ये कमीज या इसकी जो ओपनिंग है ये जेब है, जेब ये है, यानी आपकी कमीज में जो पॉकेट है, कोट में पॉकेट है, ये जेब है, और जैब ये है। अब ये क्या बात है, अगर आप इसको सोचें ये बिल्कुल ही अजीब सी बात है कि ये मतलब क्या हुआ इस जुमले का, उस लुक यदा का अपने हाथ को फी जईबे का, तो इसकी जैसे उन्होंने तशरीह की इन्हें कि खुदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात समझाई कि इंसान का सरमाया उसकी जेब में नहीं है, जेब में है, यानी अपने हाथ को यहां से गुजारो ताकि ये हाथ तुम्हारे दिल तक पहुंचे, इस दिल में तुम्हारा सरमाया है, लेकिन दिल तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है, तभी उसको सुलूक कहा गया है, यानी खुद इंसान का अपने दिल तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है, जो राह सुलूक है वो ये, लेकिन अगर तुम उस जगह तक पहुंच जाओगे तो तखरुज बैज़ा मिन गैर सू, तो कैसे निकलोगे बाहर, रोशन और सफेद होकर बगैर किसी बुराई के। मैं अशश कर उठा वाकई ना इस पर कि क्या अजीब और जबरदस्त बात है कि इंसान का सरमाया कहां पर है, यहां पर है, उसके अपने दिल में, उसकी अपनी दौलत, यानी हर इंसान की दौलत खुदा ने कहां रख दी है, उसके कल्ब में, उसके दिल में, उसकी जेब में, और उस तक पहुंचने के लिए राह सुलूक है, यानी खुद अपनी जात और अपनी तह में उतरना इतना आसान काम नहीं है, अपनी जेब से गुजरना आसान नहीं है, और उससे बढ़ के हिमाकत के हम जेब में चीजें भर के समझ रहे होते हैं कि दौलतमंद हो गए, और उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि जिसके सरमाया उसकी जेब में है वो कारून है, और जिसका सरमाया उसकी जेब में है वो मूसा कलीम है, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने यही हुक्म दिया था ना कि जाओ फिरौन के मुकाबले में, तो वो मूसा यही परेशान थे कि ये किस किस्म की बात है कि जो इतनी बड़ी मतलब जाहिरी तौर से कि जिसके पास कोई मादी वसाइल और ताकत की कोई कमी नहीं, मैं कैसे चला जाऊँ उसके सामने, मैं कैसे लड़ लूँगा, तो खुदा ने उनको ये दो चीज़ें दी थी कि जिसके हाथ में जिंदगी हो और जिसका हाथ अपने कल्ब तक पहुँच चुका हो, अपने सरमाया असली तक पहुँच चुका हो, उसके सामने ये फिरौन विरौन की कोई हैसियत नहीं है। तो ये राह सुलूक है, इसको कहते हैं राह सुलूक, कि जो अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है सैर व सुलूक और सुलूक के राहों पर आगे निकलना, हकीकतन ये सुलूक है। तो इबादत और बिलखसूस नमाज क्या है, ये सुलूक है, सैर व सुलूक का रास्ता, यानी कि इसके जरिए से खुदा ने हमें वो राहें बताई हैं कि हम अपने हकीकी सरमाए तक पहुंच सकें, ये वो रस्ते हैं कि जिसके जरिए से खुद हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपने असली हकीकी सरमाए और ख़जाने तक पहुंचते हैं। तो वो फिर उसके बाद कहते हैं कि जो मुसाफिर है इस रस्ते का, उसके लिए सबसे पहला अदब या सबसे पहली शर्त क्या है, कि अजमत खालिक को पहचाने और उसके मुकाबले में अपनी हकारत को देखे, और ये चीज़ क्या कैफियत पैदा करती है, ऐसे इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसकी नज़र में खालिक की अजमत आ जाए, जिसके पेश नज़र, تو باقی ہر چیز اس کے لیے حقیر ہو جاتی ہے، پھر کوئی چیز بڑی نہیں رہتی اس کی نظروں کے سامنے. تو کیا کوالٹی پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان خالق کی عظمت اور اس کے مقابلے میں اپنی حقارت اور ذلت کو باقاعدہ مشاہدہ کر لے، سمجھ لے، تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صفت کا نام ہے بندگی اور عبدیت. ٹھیک ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسانوں میں، اور چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، سب سے زیادہ مسنگ ہے. یعنی جس چیز کی سب سے زیادہ پرابلم ہے لوگوں کو، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے عبد نہیں ہے. اللہ کے عبد ہونے کا کیا مطلب؟ کہ ان کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے نہیں ہیں، وہ خالق کی عظمت کے قائل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب ان سارے مراحل سے آگے گزرے اور آخر میں جب وہ مرحلہ آیا کہ دریا اور فرعون کے بیچ میں، تو لوگ پریشان تھے، ان کی پوری قوم، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ یہ تھا کہ کل لا، ہرگز نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. کیوں پاسبل نہیں ہے؟ اِنَّا مَعِيَ رَبِّي، اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ میرا رب میری معیت میں ہے، یعنی میرے ساتھ ہے. سیہدین، انقریب مجھے رستہ دکھائے گا، انقریب ہدایت کرے گا. یہ وہ چیز ہے، اسے بندگی کہتے ہیں. اچھا، اس میں بس دو چیزیں جو یہاں پہ بیان کی، ایک حدیث ایک آیت، اس کی تشریح آج کی حد تک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث یہ بیان کی کہ جس کا عربی بہت خوبصورت ہے، اور اس کا آخری ٹکڑا ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی تشریح انشاءاللہ اگلی دفعہ، اگرچہ کہ انگلش میں ہے لیکن ترجمہ اس کا کسی اور زبان میں کرنا بڑا مشکل کام ہے اس حدیث کا. العبادت جوہرت، قول امام صادق علیہ السلام یہ ہے، العبادت جوہرت، عبادت ایک جوہر ہے. کن ہو ہر ربوبیت، کن یعنی کہ ایک چیز کا بالکل گہرائی، اس کی حقیقت. عبادت ایک جوہر ہے. جوہر کا مطلب کیا ہے؟ ایک ریالٹی ہے. میں نے آپ لوگوں کو شاید ایک بات سمجھائی تھی جوہر کی مثال دینے کے لیے، کہ جیسے پھول ہے، پھول کا اپنا وجود اور اس کی خوشبو، یہ اس کا ایسنس ہے، یعنی اس کا جوہر ہے. اور اس کا یہ، یعنی جو چیز بھی کسی کا جوہر ہوتی ہے وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر پھول چاہے ظاہری طور سے فنا ہو جائے لیکن کبھی بدبودار نہیں ہوگا. صحیح، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی گلاب کے پھول آپ کسی جگہ رکھیں اور اس کے بعد اس جگہ پھول کی پتیاں بھی ختم ہو جائیں، سب ختم ہو جائیں، لیکن اس جگہ سے بدبو آنا شروع ہو جائے. یہ امپاسبل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خوشبو ہے وہ گلاب کے پھول کا جوہر ہے، اس کا ایسنس ہے، اس کی ذات کا. اور جو کسی شے کا جوہر ہوتا ہے وہ چیز کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی، اس کے خلاف کبھی پاسبل نہیں ہے. تو اسی لیے جو بات کہی جاتی ہے کہ جو بھی کوالٹی ہے، یعنی صفت بھی جوہر نہیں ہے، کیریکٹرسٹک جوہر نہیں ہے، بلکہ صفت سے وہ چیز اور ڈیپتھ میں جانی چاہیے، تمہاری ذات کا حصہ بن جائے. یعنی تم جہاں بھی جاؤ وہ چیز تمہاری ذات کے ساتھ ہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ انسان کے لیے فار ایگزامپل کھانے پینے کی طلب ہونا، اب یہ ہماری ذات کی انتہائی گہرائیوں میں چیز پیوست ہے، موجود ہے. ہم جہاں بھی جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، یہ چیز ہم سے جدا ہونے والی نہیں ہے. اسی طریقے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں العبودیت جوہرت، بندگی وہ جوہر ہے. یعنی اگر جوہر بن جائے تو پھر اگلا نتیجہ آئے گا، سمجھ میں. یعنی بندگی کو کیا ہونا چاہیے؟ تمہاری ذات کا حصہ بن جائے. कि किसी भी मकाम पर रहो, किसी भी जगह पर रहो, हर जगह पर अब्द खुदा बन के रहो और अल्लाह के बंदे बन के रहो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ज़रा सा इस पर आप लोग भी कुछ बोलें ताकि बात और क्लियर हो जाए कि अलबूदियत जौहरतन का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी मिसाल के तौर पर कि अगर जिंदगी में कभी कोई ऐसा वाकया आया, कभी कोई ऐसे हालात आए कि जिसमें मैं ये कहना शुरू कर दूं कि ये खुदा ने ये काम क्यों किया, या खुदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो क्या हुआ, क्या मतलब निकला इसका? कि मेरे अंदर बंदगी ठीक है क्वालिटी की शक्ल में हो सकती है, जौहर नहीं है। यानी इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो खुद करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे सामने, कि जितने जितने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मसाइब बढ़ते गए हैं उतना बंदगी का इफेक्ट स्ट्रांग होता चला गया है। हम जैसों के साथ उलट होगा हमेशा। अब गौर करें, यानी हम जिस मकाम पर पाए जाते हैं वहां जितनी जितने मसाइब हमारे ऊपर बढ़ेंगे बंदगी उतनी कमजोर होती चली जाएगी, खुदा के बारे में उतने ही शक करेंगे कि अगर खुदा होता तो मैं, मुझे क्यों मुसीबत में डाल देता, अगर खुदा की तवज्जो होती, पता नहीं खुदा मेरी क्यों नहीं सुन रहा। लेकिन ये जुमला मौजूद है करबला के मक्तल में कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी जैसे जैसे शहादतें होती जा रही थीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग निखरता जा रहा था, यानी ऐसा लग रहा था कि आप हशाश बशाश होते चले जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल रिवर्स है। यानी कि हमारे जैसे जो इंसान हैं उनके रवैयों के हवाले से बिल्कुल रिवर्स है। तो जिसके अंदर बंदगी जौहर की शक्ल में पाई जाती है, यानी कि उसकी ज़ात का एसेंस बंदगी है, उसके नफ्स की खुशबू बंदगी है, ठीक है, तो आप उस फूल को पीस डालते हैं, आप उसको वो कर देते हैं, उसमें से क्या निकलता है? इतर निकलता है। ये नहीं होता कि खुशबू ख़त्म हो जाती। अगर आप फूल को कुचल दें, ख़त्म कर दें, तो वो फूल आपको अपनी खुशबू दे के जाता है, क्योंकि वो उसकी ज़ात का जौहर है। ऐसे ही होता है ना, फूल खुद फना होता है तो इतर आपके हाथ में आता है। ये मतलब है जौहर का और एसेंस का, कि इंसान की ज़ात का जौहर बंदगी हो जाए तो उसका नतीजा क्या है? कुन होहर रुबूबियतुन, उस बंदगी की तह में, उसकी इंतहाई गहराइयों में क्या चीज छुपी हुई है? रुबूबियत। रुबूबियत का मतलब कि जो वाकयन बंदा है वो क्या बन जाता है? रब बन जाता है। अलबूदियत जौहरतन, के बंदगी वो जौहर वो एसेंस है। कुन्ह, कुन्ह कहते हैं कि एक चीज का बिल्कुल इंटरनल इंटीरियर सेल्फ, सही, कि जहां पर, यानी कि जैसे आप कहें ना कि, यानी जैसे फॉर एग्जांपल हम आज की जबान में कहें कि हम ये मैटर देख रहे हैं और मैटर को आप डिवाइड करें तो फिर वो एटम बन जाएंगे, और एटम को डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल आएंगे, फिर उसको डिवाइड करें तो ये इतने सारे पार्टिकल, ये कुन्ह ही है। यानी इंतहाई गहराई, इंतहाई अंदरूनी उसकी हकीकत। कि जैसे अगर हम आपसे कहें कि भाई मैटर का कुन्ह क्या है, तो आप कहेंगे कि मैटर का कुन्ह जो है वो एनर्जी फील्ड्स हैं मिसाल के तौर पर, या क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स और ग्रेविटॉन्स, और ये कुन्ह है। कुन्ह का मतलब है कि इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट रियलिटी, जो हकीकत है उसकी, बिल्कुल गहराइयों में जो उसकी हकीकत। तो बंदगी वो जौहर है कि जिसकी इंतहाई हकीकत क्या है? रुबूबियत है।
बंदगी को अगर हम डिफाइन करें तो अनकंडीशनल सबमिशन विदाउट फ्रिक्शन।
जी, जैसे मैंने इसका बताया था कि बंदगी का जो लिटरल मीनिंग है वो माबद से निकला है, अब्द और माबद, معبد عربی زبان میں ایسے رستے کو کہتے تھے کہ جیسے جب صحراؤں سے لوگ گزرتے تھے تو رستے میں پتھر پڑے ہوتے تھے, کانٹے ہوتے تھے, اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی تھیں. تو لیکن جس رستے سے لوگ گزرتے 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 تو کانٹے ٹوٹ کے مٹی میں مل جاتے تھے, پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے, رستہ ہموار ہو جاتا تھا, اس رستے کو کہتے تھے معبد. تو عبدیت اور بندگی کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان جب شروع ہوتا ہے خدا کے لیے, خدا کی طرف, تو پہلے اس میں ریزسٹنس, کانٹے ابھر رہے ہوتے ہیں, پتھر ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے یہ راہ سلوک جسے ہم بات کر رہے ہیں, عبادات اور علم اور اخلاقیات اور ان سب مراحل سے جب گزرتا چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام کانٹے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, پتھر برابر ہو جاتے ہیں. تو یعنی انسان کا انر سیلف اور خدا, اس کے درمیان ریزسٹنس کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ ہم خدا کو زیادہ سے زیادہ قبول کرتے چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ وہی چیز آتی ہے جو یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ عظمت خالق اور اس کے مقابلے میں اپنی کمائیگی اور اپنی حقارت کی معرفت. کہ جب انسان اس رستے پر جتنا آگے جاتا ہے جتنا آگے جاتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں اس حقیقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں.
بندگی کے راستے میں جو ہے ریزسٹنس ایک دم نہیں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک دم مل گیا اس کے بعد پھر ریزسٹنس.
جی ایسا
اس طرح کا
جی, یعنی ہمارا گراف ظاہر ہے کہ یوں اونچا نیچا ہوتا ہوتا ہے. آپ کو جو جسے اس زبان میں بات کریں کہ ہمیں مسلسل یہ کوشش کرنا ہے کہ مین ویلیو پازیٹیو میں رہے, یعنی اگر فلکچویٹ ہو بھی تو پازیٹیو میں اوپر نیچے ہو, پازیٹیو ڈومین میں, نہ کہ خدا نخواستہ نگیٹو میں گھس جائے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے.
جیسے آپ نے کانٹوں کی بات کی تو آپ نے جو ایگزامپل دی کہ ٹو کوسچن گاڈز ول, یہ بھی ایک قسم کے کانٹے ہوتے ہیں. جیسے ہم مطلب کہتے ہیں کہ جی گرمی بہت ہے یا دھوپ تیز ہے, یہ ہم کوسچن کرتے ہیں دس از گاڈز ول, تو وی آر آبجیکٹنگ ٹوورڈز گاڈ ول کہ ایسا کیوں بنا دیا, کیوں اتنی یہ کر دیا.
جی ٹھیک ہے چلے,
ایون یہ بہت مائنر لیول پہ ہے
جی,
بٹ دس از فارم آف ریزسٹنس
ہے. ہاں درست آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ پھر یہ معیار بہت بلند ہے. اور ایک دفعہ میں نے یہ جملہ پڑھا تھا لیکن پھر اس کو سمجھانے میں بہت مشکل ہوئی مجھے, کہ علامہ طباطبائی نے یہ کہا تھا کہ جب سے میں نے خدا کو پہچانا ہے اس کے بعد سے خدا سے کچھ نہیں مانگا. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پڑھ تو دیا تھا لیکن اس کو سمجھانا میرے لیے مصیبت بن گیا اس جملے کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر خدا کو واقعاً پہچانتا ہے تو دیکھیں اب اس کے بعد کیا ہے, وہ کہے گا کہ کیا خدا کو میری حاجت معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے. کیا جواب ہے اس کا؟
معلوم
ہے. ٹھیک ہے, وہ سب سے زیادہ ہے, میری رگے شہرک سے قریب ہے, دل کے اندر ہے. خدا کو میری حاجت معلوم ہے تو کیا اس کے پاس وہ وسائل ہیں کہ جس سے میری حاجت پوری ہو یا نہیں؟ یا وسائل نہیں ہیں؟ وسائل ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس کے پاس وسائل ہیں تو کیا خدا معاذ اللہ بخیل ہے کہ وسائل ہونے کے باوجود مجھے نہیں دے گا؟ کیا کہتے ہیں؟
نہیں,
نہ خدا کے پاس وسائل کی کمی ہے, نہ خدا کے پاس بخل ہے, نہ خدا کے پاس اس چیز کی محتاجی ہے کہ وہ میرے پرابلمس کو سالو کرے, تو میں کیا مانگوں پھر اسے؟ اگر یہ سب حقیقتیں میری نظروں کے سامنے آیا ہو گئی ہیں, یعنی اگر اس ہستی کے بارے میں ہم جان رہے ہیں کہ وہ میری ہر باہر سے اندر تک ہر چیز اس کی نظر میں بھی ہے, جو میری حاجت ہے اس کو پورا کرنے کے وسائل بھی اس کے پاس موجود ہیں, وہ بخیل بھی نہیں ہے, اور اس کے پاس قوت و قدرت کی کمی بھی نہیں ہے کہ وہ اس کام کو کر سکے, تو مانگوں کیا پھر میں؟ یہ مطلب ہے اس بات کا کہ جب سے میں نے خدا کو پہچانا ہے, یہ پہچانا پہ زور ہے یہاں, یعنی یہ ہم جیسے لوگوں پہ یہ بات فٹ نہیں ہوتی کہ جو خدا کی یہ معرفت نہیں رکھتے, جب سے میں نے خدا کو پہچانا ہے اس کے بعد خدا سے کچھ نہیں مانگا, اس لیے کہ کوئی سینس نہیں بن رہا نا. تو لیکن وہ بات اپنی جگہ ضرور ہے کہ وہ دعا اور مناجات اور وہ ساری چیزیں, लेकिन हकीकतन इंसान मांगा से मुराद इस सेंस में कि जैसे हम परसुएट कर रहे होते हैं ना, आप गौर करें ना कि हम खुदा को परसुएट कर रहे होते हैं कि जैसे खुदा को नहीं मालूम कि मैं किस प्रॉब्लम में हूं, ये मतलब है मांगने का। कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो जुमला है कि 18 साल तक बीमारी की तकलीफ और अजियत बर्दाश्त करने के बाद भी ये उनकी हिम्मत नहीं पड़ सकी खुदा से कहने की कि मुझे सही कर दे, कि 18 साल की बीमारी टू मच होती है और उससे पहले सब कुछ बच्चे असबाब।
अक्सर हमने सुना है कि मांगो फिर दुआ, और आपने सवाल में कहा ना दुआ, फिर ये कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है कि अगर हम अब आया आपके अंदर फीलिंग आई,
मैं आपको आप उसको समझिएगा बहुत, इसीलिए मैंने कहा कि इसको बारीकी से समझिएगा इसको। मैं कह रहा हूं कि इस तरीके से मांगना कि खुदा मेरे हाल से बेखबर है, यहां पर उसकी बात हो रही है, मतलब कि जिस तरीके से आप खुद आयमा की दुआओं को पढ़ें तो आपको मसला समझ में आ जाएगा कि ये मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ज़ईफ़ हूं, मैं कमजोर हूं, मैं परेशान हाल हूं, मैं मुसीबतों में गिरफ्तार हूं, मुझ पर रहम कर, ठीक है सब कुछ। लेकिन इस तरीके से खुदा को मांगना या इस तरीके से खुदा से बात करना कि जैसे आपको पता नहीं है कि मैं किस हाल में हूं, इसकी बात हो रही है।
तो ये तो आपको पता है ना कि जो हमने दुआ पढ़ी उसमें लिखा है कि आप लफ्ज में बता रहे हैं, तो ये तो उसको मालूम है, आपको अब हाल भी मालूम है, तो इंसान को शुक्र ज्यादा नहीं करना कि सिर्फ शुक्र करे और अल्लाह के ऊपर छोड़ दे,
वो इजहार बंदगी है। देखें खुदा ने यह भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बंदे मेरे पास आए, मैं चाहता हूं कि मेरे बंदे अपनी हाजत मुझसे बयान करें। लेकिन आप इस बारीक फर्क को, भाई मैंने कहा ना ये समझाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है इसको यानी कि एक चीज के जैसे हम जब मिसाल के तौर पर अपने को एक फकीर की हैसियत से खुदा की बारगाह में पेश करते हैं, वो कैफियत बिल्कुल कुछ और होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जुमला है कि जब आप मिस्र से निकल के मदाइन पहुंचे थे, वाकई ना आपके जहन में फिरौन के उससे भाग के मिस्र से मदाइन गए थे, तो उस वक्त जब आप वहाँ पहुँचे हैं तो इंतहाई खस्ता हाल थे, और जिसको कहा जाता है कि पेट की खाल और पेट पीट से मिल गया था, अब बुरा हाल था उनका। उस वक्त वो एक दरख्त के नीचे बैठे और उनका उस जुमला कुरान ने नकल किया, रब्बी इन्नी लमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे रब जो कुछ भी तू नाजिल करे मेरी तरफ खैर में से मैं फकीर हूं। ये वो नहीं है, ये वो मजम्मत वाला मांगना नहीं है कि जब इंसान बंदा बन के अपने रब की बारगाह में हाजिर हो और उससे कहे कि मैं फकीर हूं, मैं मोहताज हूं, मैं ज़ईफ हूं, मेरी हालत पर रहम कर, मुझे बुलंद कर, मुझे आगे ले जा, मुझे अपनी बारगाह में तरक्की इनायत फरमाए, ये हुसन है, इसमें कोई मसला नहीं है। मसला उस दुआ में है कि हम कहें अच्छा आपको पता नहीं है कि मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और मैं इतने दिनों से आपसे मांग रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हैं।
हम डिमांड करते
हैं
ये
सवाल है दुआ में,
इसमें दुआ में अगर आप देखें तो मतलब हम लोग 80% ना खाले मारिफत और आखरत मांगी गई ना कि मतलब दुनिया, यहाँ पे भी फर्क है ना लोग जो
जी। अब उसमें बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया भी था कि जैसे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की दुआएं हैं जो बहुत बहुत खूबसूरत हैं कि अल्लाहुम्मा फर्रिगनी लिमा खलक्तनी लहू, ए मेरे खुदा मुझे फारिग कर दे उस काम के लिए जिसके वास्ते तूने मुझे खल्क किया है, ये दुआ है ना। जी
अल्लाह को लिया
जी, जैसे फॉर एग्जांपल मंगल की दुआ में कि अऊज़ु बिही मिन शर्र नफ्सी इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी व अऊज़ु बिही मिन शर्र शैतान अल्लज़ी यज़ीदुनी ज़म्बन इला ज़म्बी। अब आप देखें किस चीज़ के लिए क्या चीज़ मांगी जा रही, कि मैं अपने नफ्स के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं उस शैतान के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ कि जो मेरे गुनाह पर ज्यादती करता चला जाता है। तो बेसिकली जिस चीज़ को जैसे मांगने का हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के उसमें बात कर रहा था कि सूरह अंबिया में है कि हज़रत अय्यूब ये नहीं कह सके जब खुदा ने कहा कि ठीक है अय्यूब तुम हमारी बारगाह में हो, उन्होंने कहा रब्बी अन्नी मस्सनी अज़ुर, ए मेरे रब मुझे तकलीफ ने छू लिया है 18 साल की बीमारी के बाद और सब कुछ ख़त्म होने के को कैसे कह रहे हैं अन्नी मस्सनी अज़ुर, और फिर ये हिम्मत नहीं पड़ी कि कह देंगे इसको सही कर दे, वह अंत अरहमुर रहीमीन, ये है इस लेवल का। जाहिर है कि लेवल का फ़र्क है ना, मतलब ये मैं बार बार वाजे कर रहा हूँ कि लेवल का फ़र्क है कि ये हम जैसों के लिए जाहिर है कि हो सकता है कि बहुत धमाका खेज हों ये जुमले, लेकिन मेयार ये है। तो बहरहाल जो बात हम कर रहे थे वो ये कि बंदगी एक जौहर है, यानी ये कि बंदगी अगर इंसान का एसेंस बन जाए ऑफ द सेल्फ तो उसके अंदर क्या चीज छुपी हुई है, उसकी तह में उसकी असलियत क्या है, रुबूबियत है। रुबूबियत है, रुबूबियत यानी ऐसे इंसान को खुदा की तरफ से क्या चीज हासिल हो जाती है कि वो बंदों का रब हो जाता है, मखलूकात का रब हो जाता है। यानी जो अल्लाह का हकीकी बंदा है उसे खुदा अपनी सिफत रुबूबियत का जलवा दे देता है। ये अजीब तरीन जुमला है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का, और ये हदीस जैसे कहते हैं ना उसमें दीनी इस्तलाम है कि गुरर अहादीस में से बहुत बहुत गहरी और बहुत बामारिफत, कि जो बंदगी, और आप देख लें कि बिल्कुल यही चीज़ है, यहाँ से आपको वो बात समझ में आ जाती है कि नबी और इमाम क्यों अल्लाह की तरफ से मामूर किए गए बंदगान खुदा की तरबियत के लिए। अब इसका जवाब क्या है, इसलिए कि उनके सेल्फ का एसेंस बंदगी है, यानी वो किसी भी हालत में बंदगी से बाहर नहीं आते, जिस तरीके से फूल किसी भी हालत में अपनी खुशबू से बाहर नहीं आता, ठीक है। यानी कि और ये जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि चाहे आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आशूर तक देखें, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को उसके बाद देखें, दीगर अम्मा की ज़िंदगी का इस तरीके से मुतालिया करें, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जो इतने सख्त क़ैद खाने में आपने आपको अपने अय्याम हयात गुजारने पर, हर जगह आप देख लें कि जिसकी ज़ात का जौहर अब्दियत है उसे खुदा की राह में आने वाली तकलीफ उसकी बंदगी को स्ट्रॉन्ग करती है ना कि कमज़ोर करती है, और बंदगी जिसके अंदर जज्ब नहीं हुई वो अगर मुसीबत और मुश्किल आए तो उसमें से बंदगी के एसेंस के रुखसत होने का चांस रहता है। जैसे आम मोमिन मिसाल के तौर पर या आम मुसलमान, कि उसके लिए वो चीज़ कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। तो ये बड़ी बहुत अजीब हदीस है, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा इसको थोड़ा सा और इसके अगले भी दो पहलू हैं उसको भी टच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अलबूदियत जौहरतन कुन हो हर रुबूबिया, और इसी बात को यहाँ बयान फरमाते हैं कि नमाज क्या है, नमाज बंदगी का लेसन है। यानी कि जैसे हर इबादत एक सिफत से वाबस्ता है तो सलात किससे वाबस्ता है, अब्दियत से, बंदगी से, बंदगी है खुदा से। और पिछली दफ़ा हम थोड़ी सी बात कर भी रहे थे, इसीलिए मैंने वो सवाल आपके सामने रखे भी थे कि नमाज में क्या कैफियत, आपको याद है जो मैंने बताया था कि पहले क़याम, मैंने पहले क़िबला रुख होना, फिर तकबीर, तकबीर जो इंसान को अपने सराउंडिंग यानी माँ सिवाय खुदा से काट देती है, फिर उसके बाद क़याम, क़िरात, फिर रुकू, फिर दोबारा उठना, फिर सजदा, और सजदे की हालत अल्टीमेट है कि जिस हालत में पहुँचने के बाद इंसान वाकईन उसे बंदा बन जाना चाहिए, अब्द हो जाना चाहिए। क्यों अब्द हो जाना चाहिए, इसलिए कि वो उसने अपने जितना कुछ भी सरमाया था वो सब का सब खुदा के आगे मिट्टी पर रख दिया। यानी जिस सर को वो उठा के चलता है, जिस नाक को बुलंद रखना चाहता है, जिन हाथ पैरों से काम करता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें उसने खुदा की बारगाह में खाक पे रख दी। जी इंशाल्लाह आएगा आएगा, यानी कि ये क्योंकि सजदे की हैसियत सबसे ज़्यादा है ना, तो इस वजह से उसमें रिपीटेशन है। जी 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 जी, इस यानी कि बेसिकली नमाज जो है ना वो एक रिकात है, बाकी रिपीटेशन इसलिए है कि वो कैफियत इंसान के दिल में ज़्यादा से ज़्यादा रासिख हो, मजबूत हो। तो ये बंदगी है, ठीक है। नमाज यानी किस चीज़ का सलूक है, कौन सी राह है, बंदगी की राह है।
जी
तसव्वुर कुछ भी नहीं करे,
मतलब तसव्वुर मतलब खुदा इज एवरीवेयर एंड एवरीथिंग एंड वी थिंक नथिंग, ये वाले थॉट्स आते हैं कभी कि जो है कि हम सोच कुछ नहीं सकते खुदा को, मगर है खुदा हर जगह और हम पढ़ रहे हैं नमाज तो काबे की तरफ हम पढ़ रहे हैं, तो मतलब दिमाग में क्या हो खुदा।
नहीं देखें, मेरा ख्याल है पिछली दो दफ़ा मैंने इसी चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा बहस की थी और जोर दिया था कि मसला कल्ब है, मसला कल्ब है, मसला सोच नहीं है। यानी कि बेसिकली जो है कि सोच जो है वो भटकाने वाली चीज है। इनफैक्ट
तो मतलब सोच को जो है एकदम स्टिल कर दे, कुछ ना आने पाए।
हाँ, यानी कि आप ये कहेंगे सोचना वगैरह कुछ नहीं है, बस आप मुतवज्जे हैं एक हकीकत की तरफ। यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि आप अगर इस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर रोशनी है, तो आप रोशनी के बारे में क्या सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ, आप सोच नहीं रहे, लेकिन आप हर लम्हा रोशनी की मौजूदगी से फायदा उठा रहे हैं। यह वो चीज उसने आपको घेरा हुआ है और आपको ये एहसास मौजूद है कि मैं एक रोशन फजा में मौजूद हूं।
तो रोशनी का एहसास जब रोशनी में बैठे हैं तब तक नहीं है, जब रोशनी चली जाती तब होता है अरे रोशनी थी।
नहीं, वो तो जिद की वजह से बात है ना कि यानी कि ये तो गफलत है, इसी का नाम गफलत है ना, गफलत को से बेदार करने के लिए खुदा ने जिद रखी है चीज़ की। यानी मिसाल के तौर पर कि एक शख्स के हाथ में माल है, उस नेमत का वो एहसास नहीं कर रहा, उसको ज़ाया कर रहा है, तो खुदा उसको फ़कीर कर दे कि ये नेमत हाथ से निकली तो एहसास हुआ कि कितनी बड़ी नेमत मेरे पास थी जिसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो समथिंग लाइक दैट। और ये मैंने पिछली दफ़ा एक और बात की भी फरमाइश की थी, अगर आप याद करें उन सारी चीज़ों को, कि बुनियादी तौर से जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं ना, जिस कैफियत को लाने की, ये कैफियत अदब और तअज़ीम और मोहब्बत से आती है, ना कि सोच से आती है। मैंने पिछली दफ़ा आपको रिकमेंड किया था ना कि अपने नमाज के अच्छे से अच्छी जगह बनाएं, खुशबू लगाएं, बेहतर से बेहतर लिबास पहने, फौरी तवज्जो, आप कुछ भी ना सोचें, लेकिन आपको उस प्रेजेंस की जो फीलिंग है वो बढ़ जाएगी आपकी, वो जो डिवाइन प्रेजेंस है कि जिसे सबसे पहले इंसान अपने अंदर महसूस करता है और फिर हर जगह, उसकी फीलिंग आपके पास ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। किससे? अदब से, तअज़ीम से। तो सोच इस बारे में कहीं भी नहीं ले जाएगी आपको। यानी ये बात मैं बिल्कुल सेफली कह सकता हूँ, सुकून से कह सकता हूँ कि ये गलत नहीं है, कि अगर हम सोचेंगे ना खुदा के बारे में नमाज में या अल्फाज नमाज के बारे में, तो वो थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट पैदा होता है, लेकिन ये चीज़ आपको उस रास्ते पे नहीं ले जाएगी जिसके लिए नमाज है या जिस मकसद के लिए नमाज हमको दी गई है। जी जी, वो इंशाल्लाह वो चीज़ें आगे आती जाएंगी, लेकिन ये कि और एक बात और भी बहुत ज़रूरी है समझना, कि आप ये ना समझिए कि रोज़े अव्वल से इंसान मंजिल कमाल तक पहुंच जाता है, ऑब्वियस सी बात है। यानी यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशनसीबी की बात है कि हमने सफ़र शुरू करने का सोचा है, جس سے اکثریت انسان غافل ہیں. یہ بہت خوش نصیبی ہے ہماری کہ کم از کم خدا نے ہمارے دماغ میں یہ خیال ڈالا کہ اس طرف آؤ، ان چیزوں کو دیکھو. اور یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ لوگوں میں سے جیسے آئی ٹی اور یہ سب جانتے ہیں اچھے طریقے سے، کہ جو شخص اس میں انٹر نہیں ہوا ہوا ہو اس کو آپ پروگرامنگ کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کریں کہ دیکھو ایک پروگرام سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا پھر وہ پوچھے گا آپ سے کہ بھئی یہ پروگرام کیا ہوتا ہے، آپ اس کو کاغذ میں لکھ کے نا وہ 50,000 لائن کا کوڈ پکڑا دیں، یہ ہوتا ہے پروگرام. اور کہے گا یار یہ کس قسم کی باتیں، یہ سب پتہ نہیں کیا انہوں نے مجھے دے دیا، اس سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اس سے ایک شہر کی بجلی کنٹرول ہو رہی ہے، اس سے یہ پوری فیکٹری کی مشینز کنٹرول ہو رہی ہیں، پتہ ہے یا نہیں. ہم بھی ابھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ دین کو خالی وہ لکھی ہوئی چیزوں کے ایک تومار سے زیادہ یا کہی ہوئی باتوں سے زیادہ ابھی کچھ نہیں سمجھ پا رہے، اس حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے کہ جو جیسے مثال کے طور پر پروگرام کی ایک ریئلٹی ہوتی ہے، کیونکہ پروگرام وہ پرنٹڈ کوڈ نہیں ہے.
پرابلم خدا کو کہ اس میں تلاش کرنے میں اور یہ جو پروگرام کرنے میں، اس میں اگر ہم لکھیں گے پرنٹ ہے تو وہ ایک چھوٹا پروگرام پہلا جو لکھا ہے وہ یہ دکھ جائے گا. یہاں پہ اللہ تک پہنچنے کے لیے راستے اختیار کرنے ہیں، اور وہ راستوں میں جو ہے بندگی پہلے تو آئے، اس کے بعد یو فیل جو آپ نے ابھی
دیکھیے آپ
جو کبھی کبھی اگر آدمی سوچنے بھی بیٹھے تو کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے سوچ، اور وہ جو ہے پلٹ کے آتا ہے کہ یہ جو ہے
دیکھیں اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ان سارے رستوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ماشاءاللہ وہ ایک کام آپ کر رہے ہیں کہ انٹینشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ بات بھی آپ کے دماغ میں موجود ہے کہ بھئی اگر مشکل آئے گی تو میں بھاگوں گا نہیں چھوڑ کے، ہے نا، کہ اگر کوئی چیز بلاکنگ آ رہی ہے، پرابلم آ رہی ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. جیسے میں نے وہی آپ سے کہا نا کہ اس جگہ تک پہنچنے کے لیے کہ جو آپ ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یا جیسے جو انجینئرز محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ وہ جو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اسے اپنے اندر فیل کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی آپ جس سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہیں ابھی وہ سسٹم بنا نہیں ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کے اندر پوری اس کی ایک تصویر بن رہی ہوتی ہے. یہ کیفیت کتنی دیر میں آتی ہے؟ پہلے دن سے آ جاتی ہے کیا؟ یعنی اس جگہ تک پہنچ،
اس میں تو حیدر بھائی دماغ کا انوالومنٹ ہے، کیونکہ وہ آدمی آپ جو بھی فیل کر رہے ہیں اس کو آپ کے وہ دماغ میں چیز پروسیس ہو رہی ہے، دین وہ آپ اسے امیجنیشن.
میں ذیشان بھائی دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہم اس بات کو اس طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ دماغ ہے، دماغ نہیں ہوتا. یعنی آپ جب کسی بھی چیز کو محسوس کرتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل کہ اگر آرشیمیدس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے جب وہ بوئنسی کا رول دریافت کیا تو اس نے جو یوریکا کا نعرہ لگایا تو وہ کیا دماغ میں کوئی چیز آئی تھی؟ اس کے دماغ میں کوئی چیز آئی تھی؟ کیا خیال ہے؟ یا اگر کوئی سائنٹسٹ ہے کہ جو اس کا جب یوریکا مومنٹ آتا ہے، یا آپ ایک پروگرام بنا رہے ہیں اور پھنسے ہوئے اور اس کے بعد اچانک وہ چیز کلک کر جاتی ہے، اس میں سے کسی چیز کا تعلق، یعنی دماغ سے مراد ہے کہ وہ جو فارمل تھنکنگ ہے اس سے نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک آپ کا وجود اس میں اپنی ٹوٹیلٹی کے ساتھ انوالو ہے. آپ اس کو بظاہر کوئی نام بھی نہیں دے سکتے، یعنی اس میں آپ کی سوچ بھی چل رہی ہے، اس میں آپ کی فیلنگز بھی ہیں، اس میں آپ کے ایموشنز بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ کو خود نہیں پتا کہ کیا ہیں.
جو لوگ زیادہ امیجنیشن پہ وہ نہیں دیتے ہیں ان کی جو حدیں ہوتی ہیں بہت محدود ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جو زیادہ اپنے دماغ پر جو ہے وہ جس کو کہہ رہی ہے دماغ کی ایکسرسائز کرنا، اور وہ اتنا زیادہ مطلب اگر آپ اس میں دیکھیے کہ اس طرح کے جو سائنٹسٹ ہوئے انہوں نے زیادہ اپنے دماغ پہ زور دیا اور چیزوں کے بارے میں مطلب امیجن کرنا شروع کیا. امیجنیشن بہت
اچھا، پہلی بات امیجنیشن اور تھنکنگ دو الگ چیزیں. सबसे पहली बात तो ये कि यानी कि यहीं पर आप खुद ही अपनी बात से थोड़ा सा डेविएट हो रहे हैं और जो बात मैं कह रहा हूँ उस तरफ आ रहे हैं। यानी मैं जिस चीज को कह रहा हूँ वो है एक थिंकिंग, खाली फोर्स्ड थिंकिंग। मैं उस चीज को नहीं कह रहा कि इंसान दिमाग ना इस्तेमाल करे। फोर्स थिंकिंग आप समझ रहे हैं, फोर्स थिंकिंग ये है कि मेरा जो सेल्फ है वो खुदा की तरफ मुतवज्जे नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती सोच रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैं जबरदस्ती सोच रहा हूं। आप पिक कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं
जी?
मैं कह रहा हूं कि ये चीज इंसान को कहीं पहुंचाने वाली नहीं है। यानी कि बेसिकली हमारा कल्ब मुतवज्जे नहीं है, हमारा डायरेक्शन ऑफ सेल्फ नहीं है। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम जाके कोई लेक्चर सुने, जबरदस्ती किसी बिठा दिया जाए जिस टॉपिक से दिलचस्पी नहीं है, जिस तरफ हम मुतवज्जे नहीं है, जबरदस्ती उसके बारे में सोचें। आपकी वो बात बिल्कुल सही है कि पहले आपके पास विजुअलाइजेशन आएंगी। मैं इमेजिनेशन के लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ज्यादा बेहतर है विजुअलाइजेशन। यानी एक कैफियत उभर रही होगी आपके पास, ये वो सोच नहीं है लफ्जों वाली, ठीक है, वो विजुअलाइजेशन है, फिर रियलाइजेशन है।
लेकिन उसके लिए देखिए बहुत थोड़ा सा उसके लिए भी ये जरूरत नहीं है कि आप एक तरफ फोकस करें तभी वो जो है आप
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वो फोकस कैसे होगा?
अब
दुरुस्त है, नहीं नहीं दुरुस्त है, मैं बिल्कुल हम भी यही बात कह रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि फोकस नहीं है तभी तो मसला हो रहा है। लेकिन फोकस करने के लिए जो तरीका आम तौर से हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जबरदस्ती की सोच है। मैं ये कह रहा हूं इससे फोकस नहीं आएगा। यानी मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि फोकस आएगा दिल की पाकीजगी और तहारत से, और खुद ब खुद आएगा। जो मैंने आयत आपको सामने पढ़ी थी कि वमन युअज्जिम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, कि जितना ज्यादा मैं शायर इलाही की तअज़ीम करूंगा ये चीज खुद ब खुद दिल में पैदा होगी। अभी जो मैंने वो बात सुनाई कि उसलुक यदा काफी जई बेका, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे दिल में मौजूद हैं, तुम उसको निकाल नहीं पा रहे हो। ये सोचने साचने से थोड़ी होगा ये, हाँ, यानी वजूद जो इंसान का है, सेल्फ है, ये सब सोचने से थोड़ी मसाइल हल होंगे ये, ठीक है। तो अब जितना ज्यादा हम वो प्योरिटी डेवलप करते चले जाएंगे, उसमें जाहिर है दिमाग भी शामिल होता है, इंसान का दिमाग से कोई नहीं, लेकिन ये दिमाग नहीं है। यानी कि जैसे आपको, अगर आपने यकीनन बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं और आइंस्टाइन के हवाले से भी मैंने काफ़ी कुछ देखा है, तो उसके जो दोस्त थे या करीबी साथी थे वो यही कहते थे कि आइंस्टाइन की रियल पावर उसकी विजुअलाइजेशन में, ना कि थिंकिंग में। यानी जो उसका पहली चीज थी कि इमेजिन अ पर्सन इज ट्रेवलिंग ऑन लाइट, ऑन अ वेव ऑफ लाइट। यानी ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन थी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक लेके गई है, ना कि थिंकिंग, ना कि मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स तो उसको आती भी नहीं थी ढंग से इतनी, उसकी तो मैथमेटिक्स दूसरों ने लिखी है, इक्वेशन दूसरों ने बनाई है। ये वो चीज है जो मैं कह रहा हूं कि हम सारी जिंदगी नमाज में इसी तरीके से अल्फाज दोहराते रहेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। हम अगर आगे जाना चाहते हैं तो वही अपनी जेब तक पहुंचना है, उस सरमाए कल्बी तक पहुंचना है। जब वहां से गर्द और मिट्टी हटना शुरू हो जाएगी, ये फोकस ऑलरेडी मौजूद है। सही है ना? यानी कि जैसे आप यूं कह लें कि खुदा को, खुदा की डायरेक्शन का एंटीना या रिसीवर, ये हर इंसान के अंदर पाया जाता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि जैसे मैं और आप बनाएंगे, ये ऐसी चीज है जैसे मैं और आप अपने अंदर एक्सप्लोर करेंगे। बस इसमें किसी भी चीज से वो नफी नहीं है। यानी कोई ये नहीं कह रहा कि दिमाग बंद करके बैठ जाओ, कोई ये नहीं कह रहा कि सोच, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से तवज्जो कभी भी नहीं आएगी।
जी, कोई नहीं की बात थी कि ختم ہوتی ہے تو تب نماز شروع ہوتی ہے, انہی کی بات کی تھی نا.
امام خمینی نے بھی یہ بات کہی ہے, اور دوسرا آغائے جوادی عاملی کا میں نے وہ جملہ بہت دہرایا ہے کہ جب ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ نماز میں توجہ کیسے کریں, کیسے ہو, تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ دو نمازوں کے بیچ میں جو وقفہ آتا ہے اس میں توجہ کرنے سے اگلی نماز میں توجہ بہتر ہوتی ہے. یہ خود بخود ہوتا ہے, یہ آپ کو سوچنا نہیں پڑتا, کچھ کرنا نہیں, یہ نہیں کہ آپ اس بات پہ غور کریں, جیسے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں ڈو اٹ ڈو اٹ. رات کو آپ سوئیں دعاؤں کے ساتھ, دعا پڑھ کے سوئیں, اور جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رات کو سوتے وقت سلام کریں رسولوں پر, نبیوں پر, ملائکہ مقربین پر, اہل بیت علیہ السلام پر, اور صبح اٹھنے کے بعد سلام کریں, آپ دیکھیں آپ کی فجر خود بخود بہتر ہو جائے گی.
فجر کا ہوتا ہے لیکن ظہر اثر اور مغرب عشاء
جی, کیونکہ بیچ میں ہم سارا کام خراب کر رہے ہوتے ہیں,
کیونکہ اس ٹائم ہم لوگ انوالو ہوتے ہیں جو ورلڈلی چیز
ہے
اس ٹائم پر,
یعنی کہ وہ سارے کے سارے جسے کہہ لیں کہ وہ گرد غبار خوب بھر بھر کے اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی جو بنیادی نقطہ ہے, میں امید کر رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے, کہ نماز کی توجہ کا تعلق طہارت قلب سے ہے, نہ کہ سوچنے سے. یعنی نماز میں توجہ اس سے نہیں بڑھے گی کہ میں نماز کی حالت میں الحمد کے بارے میں بہت زیادہ سوچوں, اس سے نہیں کچھ ہوگا, بلکہ نماز میں توجہ کی کیفیت خود بخود پیدا ہوگی. کیسے پیدا ہوگی؟ جب یہاں پہ پاکیزگی ہوگی, یہاں پہ گرد و غبار کم ہوگا, خود بہت پیدا ہوگی. تو اس پر محنت کرنا ہے ہمیں. کس چیز پر محنت کرنا ہے؟ کہ فجر سے لے کے ظہر تک دل پر گرد و غبار کم سے کم آئے, ظہر خود صحیح ہو جائے گی. یہ اصل نقطہ ہے, اور اسی چیز کو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے نصیب ہوگا جب بندگی, آپ اس بات پہ غور کیجئے گا کہ ہم جو کام اپنا خراب کرتے ہیں وہ انہی سب چیزوں سے خراب کرتے ہیں, کہ ہم ایک عمل کرتے ہیں اور اس عمل کرنے کے دوران ہم اللہ کی بندگی کی کیفیت سے باہر چلے جاتے ہیں.
آپ نے جیسے بتایا بھی تھا شروع میں کہ مطلب نماز جو ہے وہ گرد و غبار کو ہٹانے کے
جی,
تو آئی تھنک دونوں چیزیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں
جی جی.
تو کیفیت اور حال میں کیا فرق ہے؟ جو حال میں انسان آ جاتا ہے وہ
کیفیت نہیں, حال جو ہے, حال کا مطلب ہے ٹیمپرری کیفیت, اور یہ حال تبدیل ہو جاتا ہے ملکے میں. ملکے کا مطلب ہے کہ پرماننٹ ہے, اور ملکہ بدل جاتا ہے جوہر میں, یعنی ذات کا حصہ بن گئی کہ اب آپ اس کو الگ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے خدا کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ خدا کی ہر صفت اس کی ذات ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا عالم الگ ہے اور خدا الگ ہے, کہ جیسے ہم ہیں کہ ہمارا علم الگ ہے ہم الگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم عالم نہیں تھے پھر عالم ہو گئے پھر بھول جائیں گے سب کچھ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علم میرا جوہر نہیں تھا, یعنی میری ذات کا حصہ نہیں تھا. جو چیز میری ذات کا حصہ اور جوہر ہے وہ اینڈ تک باقی رہتی ہے, یعنی وہ کسی بھی حالت میں ختم نہیں ہوگی, جسم رہے یا جائے. اگر آپ جوہر کو پہچاننا چاہتے ہیں نا کسی بھی انسان کے, تو اس بات سے دیکھ لیں کہ جسمانیات کے اوپر نیچے ہونے سے اس پہ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. اگر جسم کی وجہ سے اس چیز پر صفت پہ فرق پڑ جائے, اس کا مطلب ہے جوہر نہیں ہے. نہیں ہوتا, یعنی میں پھر امام حسین علیہ السلام کی مثال دوں گا کہ جو صفت بندگی جسم کی تکلیف سے بڑھ رہی تھی اس کے جواب میں, اور جو آخری جملہ آپ کا ہے کہ رضاً بقضائک و تسلیماً لامرک, مطلب وہ کمال ہے اس کا. یا اس سے پہلے جو آخری شہادت آپ کی طرف سے پیش کی گئی ہے جناب علی اصغر کی, اس میں آغا جعفر صاحب ایک جملہ کہتے تھے کہ تب امام حسین کا یہ لفظ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے, کہ اے خدا یہ مصیبت بھی میرے لیے آسان ہے کیونکہ تیری نظروں کے سامنے. کیا کیا بات ہے یہ, کیا چیز کہی ہے کہ یہ مصیبت جو میرے اوپر وارد ہوئی ہے کہ میرے ہاتھوں میں بچے کو ذبح کر دیا گیا ہے تیر سے, یہ میرے لیے آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ کیونکہ تیری نظروں کے سامنے ہر چیز, تیری نظروں کے سامنے, اور جو چیز بھی تو دیکھ رہا ہے اس میں مجھے تکلیف نہیں ہے.